आज हम इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। कार्य प्रणाली के स्थापित रूप ही संस्थाएं हैं। कभी कभी लोग ऐसी किसी वस्तु को जो सामाजिक रूप से स्थापित है संस्था कह देते हैं। इस व्यापक अर्थ में संस्था शब्द का प्रयोग एच ई बॉर्न्स के गहन अध्ययन में देखने को मिलता है, जिसमें वह सामाजिक संस्थाओं का वर्णन ऐसी सामाजिक रचना और यंत्र के रूप में करते हैं जिसके द्वारा मानव समाज मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित विविध कार्यकलापों का संगठन, निर्देशन और क्रियान्वयन करता है। इस विचार के अनुसार परिवार और राज्य और विवाह और सरकार सभी को संस्थाएं कहा जा सकता है, किंतु हमें सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर का अधिक स्पष्ट चित्र तब मिलेगा जब हम संघों और संस्थाओं के बीच भेद कर सकेंगे। संस्थाएं और संघ। जब मनुष्य संघ बनाते हैं तब वे सामान्य कार्य व्यापार के संचालन तथा सदस्यों के परस्पर नियमन के एक नियम एवं कार्य प्रणाली भी अवश्य बनाते हैं। ऐसे रूप निश्चय ही संस्थाएं हैं। अपने विशेष हित की दृष्टि से प्रत्येक संघ की अपनी विशिष्ट संस्थाएं होती हैं। उदाहरणार्थ गिरजाघर के अपने पवित्र अनुष्ठान, पूजा विधियां और कर्म कांड होते हैं। परिवार में विवाह अर्थात दाम्पत्य संबंध स्थापित करना, घर और पारिवारिक भोजन आदि संस्थाएं हैं। इसी प्रकार राज्य की अपनी विचित्र संस्थाएं होती हैं, जैसे प्रतिनिधि सरकार और विधान संबंधी कार्य प्रणालियां। हम संघों से संबंधित हैं न कि संस्थाओं से। कभी कभी हमें संस्था और संघ के बीच भ्रम हो जाता है, क्योंकि एक भिन्न संदर्भ में उसी शब्द का अर्थ संस्था या संघ हो सकता है, किंतु हमारी परिभाषा के अनुसार यह निर्णय करने में कठिनाई न होगी कि गिरजा एक संघ है और धार्मिक संप्रदाय एक संस्था है, व्यापारिक संघ एक संघ है और एक पत्नीक प्रथा एक संस्था, किंतु एक अस्पताल, संसद, कारागार अथवा कॉलेज के लिए किसी शब्द का प्रयोग करें। अस्पताल की कल्पना के साथ हमें रोगियों की देखरेख के लिए एक भवन, औषधि, सेवा की एक प्रणाली और कुछ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक अथवा व्यक्तिक रूप से स्थापित एक व्यवस्था का विचार आता है। अन्य देशों में हम उसका संस्था के रूप में विचार करते हैं, किंतु हम अस्पताल का अर्थ चिकित्सकों, परिचारिकाओं और नौकरों के एक समूह से भी लगा सकते हैं, अर्थात तब उसे एक संघ मानते हैं। यहाँ पर हमें एक सरल संकेत मिल जाता है जिससे संघ और संस्था के बीच का भेद स्पष्ट हो जाता है। जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक संघ है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। संघ से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। जब कॉलेज को छात्रों और शिक्षकों का एक समूह मात्र मानते हैं तो हम उसके संघीय पक्ष को चुनते हैं, और हम उसे शिक्षा प्रणाली मानते हैं तो उसकी संस्थागत विशेषताओं को चुनते हैं। हम एक संस्था से संबंधित नहीं हो सकते। हम विवाह या संपत्ति संबंधी प्रणालियों से अथवा एकांत कारावास से संबंधित नहीं होते, परंतु परिवारों, राज्यों और कभी कभी कारागारों से अवश्य संबंधित होते हैं। संस्थाएं और समुदाय। यह ध्यान रहे कि संस्थाओं की स्थापना समुदायों और संघों दोनों के द्वारा होती है। ऐसी संस्थाओं के उदाहरण हैं पर्व, महत्वपूर्ण अवसरों को व्यक्त करने वाले उत्सव और मनोविनोद तथा मनोरंजन के ढंग। हमारे शहरी समाज में प्रेम व्यवहार में तारीख निश्चित करने के संबंध में अत्यंत सुव्यवस्थित प्रणाली पाई जाती है, अथवा इसी प्रकार से सिनेमा देखने अथवा रेडियो सुनने के लिए इसी प्रकार की स्वीकृत पद्धतियां विद्यमान हैं। कार्य प्रणाली के ये रूप निश्चय ही संघीय समूह के कार्यों के प्रायः अंग होते हैं। इसी प्रकार से कॉलेज की मित्र मंडली में प्रेम व्यवहार के लिए तारीख निश्चित करना अथवा डेटिंग और रेडियो सुनना परिवार के भीतर प्रचलित कार्य प्रणालियाँ हैं। किंतु इस प्रकार की कार्य प्रणालियों की स्थापना न तो संघों द्वारा हुई है और न विशेष रूप से उन्हें संघों तक सीमित ही किया जा सकता है। सामुदायिक संस्थाएं अनेक संघीय संस्थाओं के विपरीत विचारपूर्वक कार्य द्वारा स्थापित नहीं की जाती। सुमनर के प्रसिद्ध शब्दों में अधिनियमित यानी इनेक्टेड होने के स्थान पर वे परिवर्धमन यानी कोइरिसिव हैं। सामुदायिक संस्थाओं को धीरे धीरे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, वे अधिष्ठान का रूप धारण कर लेती हैं। अंततः जैसा कि आगे हम सविस्तार लिखेंगे, सभी संस्थाएं चाहे सामुदायिक हों अथवा संघीय परिवर्धमान होती हैं। यदि कोई संस्था विचारपूर्वक स्थापित होती हो तो भी न तो उसका कोई निश्चित प्रारंभ ही होता है और न ही उसका अपना एक अटल स्वरूप ही होता है। संस्थाओं के अध्ययन की रीतियां। समाज की स्थापित कार्य प्रणालियों का सविस्तार विश्लेषण कई शताब्दियों से लोग करते आ रहे हैं। साधारणतया इस प्रकार का अन्वेषण करने में तीन मार्गों का अनुसरण किया गया है, या तो पृथक रूप से अथवा सम्मिलित रूप से। पहला, ऐतिहासिक विश्लेषण में किसी एक ही संस्था के कालक्रम से विकास की खोज करने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरणार्थ, प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र के उदय, एक पत्नी प्रथा के विकास तथा पूंजीवादी उद्यम के आविर्भाव का प्रायः इसी दृष्टिकोण से अध्ययन हुआ है। यद्यपि अध्ययनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु उन्हें सभी संस्थाओं के परिवर्धमान प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां अवश्य विद्यमान हैं। किसी भी संस्था या संगठन की उत्पत्ति या उद्गम की खोज करने का कभी अंत नहीं होता। दूसरा, तुलनात्मक विश्लेषण में एक समाज के विभिन्न स्तरों अथवा विभिन्न समाजों में विद्यमान एक ही संस्था का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण की पद्धति से विवाह के रूपों, यौवन संबंध प्रतिमानों, संपत्ति संबंधी कार्य प्रणालियों, बच्चों के प्रशिक्षण की पद्धतियां आदि का अध्ययन हुआ है। अरस्तु का ग्रंथ पॉलिटिक्स, जो 158 नगर राज्यों के संविधानों पर आधारित था, तुलनात्मक पद्धति का एक प्रख्यात प्रारंभिक उदाहरण है। नृतत्वशास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजिकल अन्वेषणों में इस पद्धति का विशेष उपयोग हुआ है, और वेस्टरमार्क ब्रिफॉल्ट के विवाह के क्षेत्र में अध्ययन तथा संबंध में अभी हाल में प्रस्तुत रूथ वेंडिक्ट और मार्गरेट मिड के अध्ययन हम सभी के लिए संस्थागत विभिन्नताओं के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा, संस्थाओं का अध्ययन इस दृष्टि से भी किया जा सकता है कि समाज के अंतर्गत उनके पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं। इस प्रकार की पद्धति में संस्थाओं के प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल अंतर संबंधों पर बल दिया जाता है। अतः इसमें प्रायः ऐतिहासिक विश्लेषण से काम लिया जाता है, और यह बहुधा संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग करती है अथवा उसका सुझाव देती है। कोई भी संस्था एक पूर्णतया आवृत व्यवस्था बनाकर कार्य नहीं कर सकती। अतः हम इस संपूर्ण पुस्तक में संस्थाओं के अंतर संबंधों पर विचार करेंगे। केवल एक उदाहरण लीजिए, विवाह का एक यथार्थ अध्ययन तभी संभव हो सकता है जब हम स्वयं विवाह और वैधानिक संस्थाओं, संपत्ति संबंधी संस्थाओं, बंधुओं की संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं आदि के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। संस्थाओं के इस संक्षिप्त विवेचन में एक बात से सावधान रहना अपेक्षित है। कार्य प्रणाली के ये स्थापित रूप स्पष्टतः वे पद्धतियां हैं जिनका उपयोग मनुष्यों के समूह करते हैं, चाहे फिर वो पद्धतियां संघों के अधिनियमित उपकरण हों अथवा सामुदायिक व्यवहार के अनौपचारिक रूप से विकसित प्रतिमान हों। वास्तविक जीवन में संस्थाओं को उन लोगों से पृथक नहीं किया जा सकता जो उनके ढंगों या तरीकों का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार सामाजिक यथार्थ के अन्वेषण में सदैव मनुष्य संस्थाओं और मानव समूह दोनों का ही उल्लेख सदैव सम्मिलित रहता है। परंतु यदि हमारे अध्ययन का केंद्र संस्था हो, जैसा कि हमने ऊपर परिभाषित किया है, तो वह स्वयं कार्य प्रणालियों पर ही केंद्रित रहता है। संस्थाएं और हित। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अनेक प्रकार के संघों में मिलती हैं, जैसे सदस्यता प्राप्त करना, अधिकारियों का निर्वाचन और प्रबंध का एक रूप। परंतु कुछ अन्य संस्थाएं हैं जो किसी एक अथवा अन्य प्रकार के संघ का एक विचित्र अथवा विशिष्ट लक्षण होती हैं। एक संस्था की विशिष्टता अथवा उसकी विचित्र प्रकृति उन विशिष्ट हितों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनकी पूर्ति का प्रयत्न संघ द्वारा किया जाता है। संघों, संस्थाओं और हितों के बीच संबंध को आगे प्रदर्शित किया जाएगा। संघ, संस्थाएं तथा हित, इन्हें एक विशेष तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। संघ में सबसे पहले परिवार। इसकी विशिष्ट संस्थाएं हैं विवाह, घर, उत्तराधिकार और विशेष हित, यौन संबंध, घर, वंशावली। दूसरा संघ है कॉलेज। विशिष्ट संस्थाएं हैं भाषण और परीक्षा प्रणाली, स्नातकत्व। विशेष हित है शिक्षण और व्यावसायिक तैयारी। तीसरा संघ है व्यापार। व्यापार का विशिष्ट संस्थाएं हैं लेखा प्रणाली, संस्थापन, अंश और पूंजी। और विशेष हित है लाभ। अगला संघ है श्रमिक संघ और इसकी संस्थाएं हैं सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, धरना इत्यादि। और इसका हित है नौकरी सुरक्षा, पारिश्रमिक दरें, कार्य की स्थितियां। अगला संघ है गिरजा यानी धार्मिक संघ। विशिष्ट संस्थाएं हैं संप्रदाय, धर्म भ्रातृत्व, समानता के रूप। और विशेष हित है धार्मिक विश्वास। अगला संघ है राजनीतिक दल और इसकी विशिष्ट संस्थाएं हैं प्राथमिक इकाइयां, दल और राजनीतिक मंच। इसके विशेष हित हैं कार्यालय, शक्ति और सरकारी नीति। और अंतिम संघ है राज्य और इसकी संस्थाएं हैं संविधान, वैधानिक संहिता और शासन के रूप। इसके विशेष हित हैं सामाजिक व्यवस्था का साधारण नियमन। प्रथाएं, लोक रीतियां और लोकाचार। कस्टम्स, फॉकवेस एंड मोड्स, प्रथाओं की प्रकृति। संस्थाओं और संघों की अधिक औपचारिक व्यवस्था के आधार में और उसको बनाए रखने में चलनों अथवा व्यवहार के ढंगों की एक जटिल व्यवस्था विद्यमान है। अतः भोजन करने, बातचीत करने और लोगों से मिलने जुलने, प्रेम याचना करने, बच्चों को प्रशिक्षित करने, वृद्धों की देखभाल करने इत्यादि व्यवहार की प्रायः अनंत प्रकार की स्वीकृति प्रणालियां हैं। सामाजिक मान्यता प्राप्त कार्य करने अथवा व्यवहार करने के ढंगों को समाज की प्रथाएं कहते हैं। एक अर्थ में हम समाज की प्रथाओं के अनुरूप अचेतन रूप से ही कार्य करते हैं, क्योंकि वे हमारे सामूहिक जीवन का एक सशक्त आंतरिक भाग हैं। वास्तव में वे हमारे जीवन में इतनी सुदृढ़ता से अंतर्मुत हैं कि हम प्रायः अपनी विशिष्ट प्रथाओं को कार्य करने का एक मात्र सही ढंग मान बैठने की भूल करते हैं अथवा इन प्रथाओं को स्वयं मानव प्रकृति मान लेते हैं। यह स्थिति ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं जो काफी गंभीर हो जाती हैं। संस्था और प्रथा में भेद। एक सामाजिक चलन और प्रथा में तथा सामाजिक चलन और संस्था में केवल मात्रा की दृष्टि का ही अंतर होता है। संस्था में एक अधिक निश्चित मान्यता निहित रहती है। विवाह के उत्सव को हम संस्था कहेंगे, किंतु वर और वधु में विवाह के पूर्व के प्रेम संबंधों यानी कोर्टशिप की विभिन्न प्रणालियों को प्रथाएं कहना अधिक उपयुक्त होगा। विवाह स्वयं एक संस्था है, एक प्रथा नहीं। संस्थाओं के बाह्य अधिकार चिन्ह और सार्वजनिक स्वीकृति के चिन्ह होते हैं, जिनकी आवश्यकता प्रथाओं के लिए नहीं होती। कभी कभी यह सुनने में आता है कि हमारी संस्थाएं दुर्बल की जा रही हैं, परंतु इस प्रकार का आरोप प्रथाओं के प्रसंग में यदा कदा ही किया जाता है। इससे एक दूसरे भेद का सुझाव मिलता है। संस्था शब्द सामाजिक संबंधों में अव्यक्तिक तत्वों पर बल देते हैं। जब हम प्रथाओं का उल्लेख करते हैं तो उन स्वीकृत रूपों का विचार करते हैं जिनमें लोग मिलकर व्यक्तिगत संपर्क में साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु जब हम संस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय नियंत्रण की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्तिगत संबंधों के भी परे विस्तृत है। नियंत्रणों की यह व्यवस्था भूत और वर्तमान तथा वर्तमान और भविष्य के बीच एक संबंध सूत्र है जो मनुष्य को उनके पूर्वजों से, उनके देवताओं और उनकी आगामी पीढ़ियों से जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार जब विवाह से पूर्व प्रेम व्यवहार अर्थात कोर्टशिप अथवा वेशभूषा और मनोविनोद में जब कोई परिवर्तन होता है तो हमें इसके प्रति कोई गंभीर चिंता नहीं होती, किंतु जब संपत्ति, विवाह अथवा निर्वात या स्वतंत्र उद्यम को किसी प्रकार का खतरा प्रतीत होता है तो कई लोग अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका विस्तार राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बेहतर संगठनों में प्रकट होता है। लोक रीतियां। हम लोक प्रथाओं को मानते हैं और संस्थाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं में व्यवहार करते हैं। अब हमें एक ऐसे पर्याप्त व्यापक शब्द की आवश्यकता है जो समाज द्वारा निर्मित आचारों या प्रथाओं की संपूर्ण श्रृंखला के लिए प्रयुक्त हो सके। लोक रीतियां और लोकाचार शब्द इसी दृष्टि से प्रचलित हो गए हैं। सुमनर ने अपनी पुस्तक फूक वेच में इन दो शब्दों का प्रयोग प्रचलित कर दिया। उसने लोकरीतियां शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया। वे यानी लोकरीतियां प्राकृतिक शक्तियों के उन उत्पादनों के समान हैं जिन्हें मनुष्य अचेतन यानी अनकॉन्शियसली रूप से कार्य में लाते हैं, अथवा वे पशुओं के उन मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहारों के समान हैं जिनका विकास अनुभव से होता है, जो एक हित के प्रति अधिकतम अनुकूलता के अंतिम रूप तक पहुंच जाते हैं, जो परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं और जिनमें न कोई परिवर्तन होता है और न अपवाद और नई स्थितियों की पूर्ति के लिए बदलते रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हीं सीमित रीतियों के भीतर और बिना प्रयोजन अथवा परिवर्तनशील चिंतन के ऐसा होता है। इसका यह परिणाम होता है कि सभी युगों तथा संस्कृति की सभी अवस्थाओं में मनुष्यों के समस्त जीवन पर प्रारंभिक नियंत्रण लोक रीतियों के एक विशाल समूह से होता है, जो मनुष्य जाति के प्राचीनतम अस्तित्व से बराबर चली आई हैं और जिनमें पशुओं की रीतियों की प्रकृति भी निहित रहती है। इन लोक रीतियों की सबसे ऊपरी सतह ही परिवर्तन अथवा नियंत्रित होती हैं और कुछ सीमा तक मानव दर्शन, आचार शास्त्र, धर्म और अन्य प्रकार की बौद्धिक चिंतन क्रियाओं से संशोधित हुई हैं। अरस्तु समाज में व्यवहार की स्वीकृत प्रणालियों को लोक रीतियां कहते हैं। इनमें परिपाटियों, शिष्टाचार के रूपों और व्यवहार के अनंत प्रणालियों का समावेश होता है, जिनको मनुष्यों ने विकसित किया है और कर रहे हैं तथा जिनके सामाजिक जीवन का कार्य व्यापार चलता है। निश्चय ही वे समाज और काल के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। पाश्चात्य समुदाय में नेक टाई पहनना सौंदर्य बढ़ाने की एक लोक रीति है, वैसे ही जैसे फिलिपाइन में निग्रिट लोगों में दांतों की रेती से बराबर करना है, यही लोक रीतियां हैं। लोकाचार व्यवहार के नियामक हैं। यदि हम लोक रीतियों को व्यापार के केवल मानदंड न मानकर उन्हें उसका नियामक माने तो यही लोक रीतियां लोकाचार हो जाती हैं। प्रत्येक सामाजिक चलन और प्रत्येक लोक रीति एक मात्रा में एक सामाजिक नियंत्रण है। अत्यधिक छिछली परिपाटी अथवा शिष्टाचार का अत्यधिक महत्वहीन नियम भी ठीक अथवा उचित ढंग के गुण से युक्त होता है, जिसे कार्य करने का निर्धारित ढंग कहा जा सकता है। अतएव हमें उन लोकाचारों को लोक रीतियों से पृथक वस्तु नहीं मानना चाहिए। वे लोक रीतियां इसलिए हैं क्योंकि उनमें नियंत्रण के उपकरण होने की क्षमता है। वे समूह के मानकों को व्यक्त करते हैं, अर्थात समूह की उस धारणा को जो किसी कार्य को उचित, सही अथवा कल्याण के लिए लाभप्रद समझती हैं। सुमनर के अनुसार कभी कभी लोक रीतियां और लोकाचारों में भेद किया जाता है, तब यह तर्क दिया जाता है कि जब लोक रीतियों के साथ समूह कल्याण की धारणाएं तथा उचित और अनुचित के प्रमाण जुड़ जाते हैं तो वे लोक रीतियां लोकाचारों में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी ढंग के वस्त्र पहनना लोक रीतियों के अनुरूप होने को व्यक्त करता है, किंतु स्वयं कपड़ों का पहनना लोकाचार या लोकाचारों द्वारा बाध्य किया जाता है। निश्चय ही बाध्यता और समरूपता भिन्न भिन्न अंश में होती हैं और इसलिए सामाजिक नियंत्रण को कभी भी सभी दिशाओं में समान और सुस्थिर दबाव नहीं कहा जा सकता। परंतु इससे कौन इनकार कर सकता है कि पाश्चात्य समाज में भोजन के प्रारंभ की अपेक्षा उसकी समाप्ति पर फल मिष्ठान आदि खाने जैसी लोक रीतियों का एक नियामक दबाव है। समाज के लोकाचारों को हम सामूहिक चलनों अथवा प्रणालियों में दबाव युक्त शक्तियों के रूप में देख सकते हैं। लोकाचारों की विविधता। लोकाचारों का निर्माण किसी बुद्धिसंगत रचना अथवा भविष्यदर्शी योजना का परिणाम नहीं कहा जा सकता है। समूह के सामाजिक जीवन या सामाजिक अनुभव का कुछ ही अंश उनमें मिलता है। यदि हम विभिन्न समूह में वर्तमान लोकाचारों को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि उनके निर्माण में संयोग और आकस्मिकता का बहुत बड़ा हाथ है। किसी समूह में सम्मान दिखाने के लिए सिर्फ नंगा कर लेते हैं, जबकि अन्यत्र ऐसा करने के लिए नंगे पैर हो जाते हैं। कुछ समूह में समूह से बाहर के व्यक्तियों से विवाह संबंध अस्वीकृत हैं, जबकि दूसरों में बाहर के व्यक्तियों से ही विवाह करना स्वीकृत है। इसी प्रकार किसी समाज में विधवाओं का पुनर्विवाह निंदित होता है, जबकि दूसरों में इसको एक प्रशंसनीय व्यवस्था माना जाता है। कुछ समूहों में विवाहितों के लिए यौन संबंधी कठोर नियमों का पालन अनिवार्य है, परंतु अविवाहितों के लिए ऐसा नियम नहीं है। दूसरे समूह में ठीक इसके विपरीत आचार प्रचलित हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। वास्तव में ऐसे बहुत थोड़े व्यवहार होंगे जो संसार में सार्वभौमिक रूप से निषिद्ध किए गए हों। शायद माता और पुत्र का गोत्र गमन ही एक ऐसा व्यवहार होगा जिसको सभी मानव समाजों में निषेध के रूप में स्वीकार किया जाता है। चूंकि विभिन्न समूह और समाजों में लोकाचारों की इतनी अधिक विभिन्नता है, इसलिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें पर्याप्त सावधान रहकर विषय के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के निष्पक्ष एवं तटस्थ दृष्टिकोण का अध्ययन करना चाहिए। लोकाचार और सामाजिक जीवन। इस अध्याय के सामाजिक जीवन में लोकाचारों के साधारण कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। समाज के विद्यार्थी का सदैव ही लोकाचारों के अध्ययन से अनिवार्य संबंध क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिया जा रहा है। पहला, लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहारों को निश्चित करते हैं। लोकाचार सामाजिक जगत के बाध्यकर्ता और निषेधकर्ता उपकरण के रूप में प्रत्येक समूह का निरंतर दबाव डालते रहते हैं। जब हम अपने समकालीन समाज की सामाजिक संहिताओं यानी कोड्स की विविधता और जटिलता पर विचार करेंगे तो लोकाचारों का उपयुक्त कार्य हमारे लिए विशेष महत्व का प्रतीत होगा। दूसरा, लोकाचार व्यक्ति का समूह से तदात्म्य स्थापित करते हैं। यदि एक ओर लोकाचार व्यक्ति पर अपने समुदाय, सामाजिक वर्ग अथवा लिंग के अनुसार आचरणों की एक रूपता पर दबाव डालते हैं, तो दूसरी ओर व्यक्ति लोकाचार के अनुसार व्यवहार से अपने साथियों के प्रति तदात्म्य स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार वह उन सामाजिक सूत्रों को बनाए रखता है जो संतोषपूर्ण जीवन के लिए अस्पष्टतः बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि भिन्न भिन्न समुदायों के लोकाचार एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं और अक्सर परस्पर विरोधी भी, इसलिए उनकी शक्ति उन बड़े समाजों में कम हो जाती है जहां भिन्न प्रकार के समूह एक साथ रहते हैं। विशाल शहरी समुदायों की अपेक्षा ग्रामीण समुदायों में लोकाचार अधिकतर बाध्यतापूर्ण, एकीकृत और अधिक एकता करने वाला होता है। यहाँ तक कि शहरी केंद्रों में लोकाचारों की अनेक व्यवस्थाएं होने के कारण व्यक्ति के लिए बहुधा चुनाव करने में बड़ी कठिनाई होती है। समाज के विकास के साथ साथ लोकाचार अधिक विशिष्टीकृत हो जाते हैं। वे विशिष्ट संहिताओं, प्रथा, फैशन, कानून और विभिन्न प्रकार के धार्मिक और अन्य सांस्कृतिक समूहों की संहिताओं की श्रृंखला के रूप में प्रकट होते हैं। लोकाचार का नियंत्रण अधिक लोचपूर्ण हो जाता है और सामाजिक अनुभवों की विभिन्नताओं को अधिक स्वतंत्र और अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।